नशे में अगर कुछ बात होती तो बता देता मैं तुमको, पर बात तो तुम में क्या बताऊं। कुछ मत बता, तुझे चढ़ गई है। तू ना एक काम कर, नींबू चाट ले। अरे यार, मेरे अंदर की रूमी को बहाना आना कोई तुझसे सीखे। यहाँ मैं माहौल बना रहा हूँ और तू मुझे बना रही है। नींबू, सीरियसली। अभी तो हमें आए हुए बस एक घंटा हुआ है। वो कहते हैं ना, रात भी जवान है। तू कौन, मैं कौन, खामखा फिकर मत कर ए दिल। वो बहुत ज़ोर से हंसी और अपने वाइन के ग्लास को अपने होठों से लगा के थोड़ी वाइन पी गई। यार तुझे ना बहुत जल्दी चढ़ जाती है, जब झेल नहीं सकता तो इतनी पीता क्यों है? बता दूँ क्यों पी रहा हूँ? चल आज तुझे बता ही देता हूँ अपना हाल है दिल। फक, कॉकरोच उड़ते क्यों हैं यार? मैं बाथरूम से भाग के लिविंग रूम में आ गया। अभी तो मैंने होश संभाला ही था कि मैंने सामने देखा और मेरे होश उड़ गए। मेरा मुंह खुल गया और मेरी आंखें थोड़ी और बड़ी हो गई जब मैंने सौम्या को लाल साड़ी में देखा। उसके हल्के गीले बालों को आंखों से नापा मैंने तो वो उसकी कमर पे खत्म हो रहे थे। और कसम से उसकी कमर पे ना कोई भी खत्म हो जाए। वो धीरे धीरे चलती हुई किसी अप्सरा की तरह मेरे पास आ रही थी। मेरी आंखें उसकी आंखों में अटक गई। मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी, भाई कितनी हॉट है। जब वो मुझसे 2 इंच की दूरी पे थी, शायद उस वक्त मैंने सांस लेना बंद कर दिया। साड़ी में ना बहुत ताकत है। उसने मुझे एक उंगली से इस सोफे पे गिरा दिया और अपने हाथों को मेरे गले में डाल के मेरे ऊपर बैठ गई। वो बस मेरी आंखों में देख रही थी और मुझे कुछ हो रहा था। ऐसा लग रहा था कोई धीरे धीरे मुझे अपने वश में कर रहा हो। पास से उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसकी जुल्फे मेरे चेहरे पर आ रही थी और उसके होठ पे जब मैं ठहरा तो मुझसे रुका ना गया। फिर कुछ 2 मिनट तक मुझे इस दुनिया में आने का मकसद पता चला। 2 मिनट बाद जब हमने आंखें खोली तो सब शांत हो चुका था। एक किस के बाद जो सुकून होता है ना, वो सुकून चाहता हूं मैं हमेशा। गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग। तो फिर बताओ आज क्या है? अब ये सुन के ना मेरे कान खड़े हो गए और मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। मेरा दिल मुझसे बस एक ही बात कह रहा था कि भाई ये गुड मॉर्निंग नहीं है। क्या है? हाँ वही तो पूछ रही हूं ना मैं, आज क्या है? सौम्या की आंखों में थोड़ा गुस्सा आया और वो धीरे धीरे मुझ पे से उठ के मेरी साइड में बैठ गई। मेरे दिमाग में सवाल जवाब की आंधी आ गई थी। बर्थडे? नहीं यार, एनिवर्सरी। अभी तो गई थी यार 3rd एनिवर्सरी कुछ दिन पहले। उसके कुत्ते का बर्थडे, कुत्ता तो मैं ही हूं। जब सौम्या ने मुझे ऐसे परेशान देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं उसको एक ऑकवर्ड सी स्माइल दे रहा था। व्हाट? तू ना बहुत फट्टू है। कुछ नहीं है आज, बस मॉम डैड आ रहे हैं मेरे चंडीगढ़ से 2 घंटे में। मैंने बताया था ना तुझे 1 हफ्ते पहले, तुझे आज अपने दोस्त के घर रहना होगा, एक ही दिन की बात है। अरे यार तूने तो डरा ही दिया था मुझे। अच्छा सुन, हम कब बताने वाले हैं उन्हें अपने इस रिलेशनशिप के बारे में? यार लिविन सुन के ना उन्होंने मर जाना है। मैं ऐसे नहीं बता सकती उन्हें, जब वो 1-2 हफ्ते के लिए आएंगे ना तब तसल्ली से बता दूंगी उन्हें। ये भी ठीक है, पर एक बात बता, तूने लाल साड़ी क्यों पहन ली सुबह सुबह? शादी के लिए लड़का लेके आने वाले हैं क्या तेरे घर वाले? सौम्या ने हंसते हुए मेरी बात काट दी और खड़ी हो गई। ये साड़ी ना मम्मी जी ने दी थी मुझे, उन्हें अच्छा लगेगा देख के। चल अब तू निकल जा, वो कभी भी आ जाएंगे और कल सुबह 11 बजे की फ्लाइट है उनकी। मैंने अपनी ब्लैक टी शर्ट और पजामा पहना और अपना बैग टांग के निकल गया। गेट बंद करने से पहले मैंने उसको एक बार फिर से लाल साड़ी में देखा। हेडफोन्स लगा के मैं चल पड़ा अपने दोस्त के घर। आज की सुबह बहुत सही थी, बस कुछ वक्त मिल जाता ना सौम्या के साथ तो दिन बन जाता। मैंने ऊपर देखा तो मुझे लगा कि शायद आज बारिश होगी। दोस्त के घर पहुंच के मैंने नाश्ता किया। ऑमलेट खाते हुए भी मुझे सौम्या दिखाई दे रही थी। मेरा दोस्त ना बहुत आलसी है, वो रात भर जागता है और पूरे दिन सोता है, तो सौम्या के बारे में मैं पूरे दिन आराम से सोच सकता था। मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। दिन से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम। मैंने अपना फोन उठा के देखा, सौम्या का कोई मैसेज या कॉल नहीं था। हाँ ठीक है, मम्मी पापा आए हैं, खूब बातें चल रही होंगी। काश मैं उनसे मिल पाता, बता पाता उन्हें कि कितना प्यार करता हूँ मैं आपकी सौम्या से। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से सब हिल गया। जिस सोफे पे मैं लेटा था उससे मैं नीचे गिर गया। दीवार पे लगी बॉब मार्ले और मियां खलीफा की फोटो फ्रेम भी नीचे गिर गई और टूट गई। पूरा घर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हिल रहा था। ऐसा भूकंप मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मेरा दोस्त अंदर से अपना कच्छा संभालते हुए भागते हुए आया और बोला, मियां खलीफा। हम दोनों घर से बाहर भागे और बाहर रोड पे आ गए। अभी भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे। मेरा दिल बाहर आने को था, तभी मुझे याद आया सौम्या। मैंने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और रिसेंटली डायल्ड में से सौम्या को कॉल किया। जब सौम्या ने फोन नहीं उठाया तो मैं घबरा गया और मैंने दोबारा उसको झट से फोन मिला दिया। 13 कॉल्स के बाद भी जब सौम्या ने फोन नहीं उठाया तो मैंने जल्दी से उसके घर की उबर बुक करी और इंतजार करने लगा। बारिश को भी अभी आना था, इतना फिल्मी था ना सब कुछ, पर कोई हीरो वाली फील नहीं आ रही थी मुझे। मुझे बस चिंता थी सौम्या और उसके मम्मी पापा की। ये हुआ क्या अचानक से, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। उबर में बैठ के मैंने भैया को बोला, भैया यार जल्दी से पहुंचा दो, थोड़ी इमरजेंसी है। कैब में बैठे बैठे मेरे मन में 100 बुरे ख्याल आ रहे थे। क्या हुआ होगा, ठीक होंगे ना सब। मेरे पैर एंजाइटी में ऊपर नीचे हिल रहे थे। हाँ भैया बस ये वाइट वाला घर, थैंक यू। मैं कैब से उतरा और मैंने बाहर देखा, बाकी सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। आपस में बातें कर रहे थे, कितना भयानक भूकंप था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सौम्या के घर का गेट बंद था, मैं डर गया और भागते हुए गेट तक पहुंचा। मैंने 3-4 बार लगातार बेल बजाई, कोई नहीं आया। गेट को मैंने अपने हाथ से 2-3 बार बजाया। मेरी धड़कनें बस रुकने ही वाली थी कि गेट खुल गया और इससे भयानक भूकंप मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। एक लड़का टावल लपेटे बाहर आया और बोला, पिज़्ज़ा लाए हो क्या, भूकंप की वजह से लेट हो गए या बारिश की वजह से, और हंसने लगा। वो कहते हैं ना, पैरों के नीचे से ज़मीन का खिसक जाना, आज 2 बार हो चुका था है मेरे साथ। हाँ ये सी ब्लॉक है क्या, उसने मुझे डिसअपॉइंटेड सा लुक दिया और गेट बंद कर दिया। गेट बंद करते हुए उसने अंदर जाते हुए बोला, नहीं यार सौम्या पिज़्ज़ा नहीं आया। मैं वहीं जम गया था, नहीं मिलना चाहता था मैं उस वक्त सौम्या से। समझ तो सब आ गया था, पर दिल जब सहम जाता है ना उसको थोड़ा वक्त देना बहुत ज़रूरी है। कुछ देर वहीं खड़े होने के बाद मैं घूमा और पैदल ही खाली सड़क पे निकल गया। सोच ज्यादा कुछ नहीं रहा था मैं, पहली बार सड़क को इतने करीब से देखा था मैंने। खाली सड़क, अकेली, लोग आते हैं और चले जाते हैं, ये सड़क यहीं रह जाती है। मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा और सोफे पे लेट गया। फोन चेक किया तो एक मैसेज था, गुड नाइट बेबी, एवरीथिंग इज फाइन, सब डर गए हैं, कांट टॉक राइट नाउ, आई होप तुम ठीक हो, कल 12 बजे मिलते हैं एट द मॉर्निंग बार। नशे में अगर कुछ बात होती तो बता देता मैं तुमको, पर बात तो तुमने, क्या बताऊं, कुछ मत बता, तू तुझे चढ़ गई है, तू एक काम कर, नींबू चाट ले। अरे यार, मेरे अंदर के रोमी को भगाना ना कोई तुझसे सीखे, यहाँ मैं माहौल बना रहा हूँ और तू मुझे बना रही है नींबू। सीरियसली, अभी तो हमें आए बस एक घंटा हुआ है, वो कहते हैं ना, रात अभी जवान है, तू कौन मैं कौन, खाम खाम फिकर मत कर ऐ दिल। वो बहुत ज़ोर से हंसी और अपने वाइन ग्लास को अपने होठों से लगा के थोड़ी वाइन पी गई। यार तुझे ना बहुत जल्दी चढ़ जाती है, जब झेल नहीं सकता तो इतनी पीता क्यों है, बता दूँ क्यों पी रहा हूँ। चल आज तुझे सुना ही देता हूँ अपना हाल है दिल, घुमा फिरा के उन्हीं शब्दों के साथ एक पुरानी कहानी सुनाऊंगा। दिल वैसे ही टूटेगा जैसे पहले टूटा था, दर्द भी हूबहू वैसा ही होगा, बस टूटने वाला दिल किसी और का होगा। ये बात उन दिनों की है जब सब कुछ अच्छा लगता है। शुरू से शुरू करूं तो जब कोई कहानी शुरू होती है, कोई आता है, उसके बिना तुम्हारा कहीं दिल नहीं लगता, उसके साथ वक्त का अता पता खो जाता है, फिर वो भी खो जाता है। क्यों खो जाता है, क्या बोले जा रहा है तू, यही के मम्मी पापा के नाम पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ मेरे होने का, जैसे चांद को होता है सूरज को डूबता देखकर।